बोलती कहानियां
बोलती कहानियां क्रम में आज सुनिए कृष्णचंद्र की लंबी कहानी एक गधे की वापसी का पहला भाग। स्वर अनुराग शर्मा का है।
रेडियो प्लेबैक इंडिया।
मैं ना तो रूसियों का रॉकेट हूँ, ना अमरीकियों का पॉकेट हूँ, ना गली हबशखां का फाटक हूँ, ना मैं रमता जोगी न्यारा हूँ, ना कोई बनावटी सैयारा हूँ, ना किसी फिल्मी हीरोइन का प्यारा हूँ, ना किसी लखपति की आंख का तारा हूँ। मैं महज एक गधा आवारा हूँ, जिसे बचपन की गलतकारियों के कारण अखबार पढ़ने की आदत पड़ गई थी, जो न कविराज गुरनाम दास के हिदायत नामे से दूर हुई, न प्यारी बहन जी के इलाज से। अखबार पढ़ते पढ़ते मैं इंसानों की बोली बोलने लगा और कूट राजनीति की बातें करने लगा। इसी कारण मैंने अपना प्यारा वतन बाराबंकी छोड़ा और डंकी बनकर दिल्ली के एक धोबी से नाता जोड़ा। धोबी को अचानक एक मगरमच्छ ने खा लिया और मुझे, धोबी की विधवा पत्नी, अनाथ बच्चों के निर्वाह के लिए बड़े बड़े अफसरों की सेवा में निवेदन करने को विवश कर दिया। मैं अर्जी लेकर दफ्तर दफ्तर घूमा और मिनिस्टर मिनिस्टर पहुंचा और पहुंचते पहुंचते एक दिन सीधा पंडित नेहरू की कोठी पर जा पहुंचा। पंडित नेहरू से संयोगवश मेरा इंटरव्यू हो गया और उसने मुझे प्रसिद्धि के आसमान पर पहुंचा दिया। लोग मुझे घरों और क्लबों में बुलाने लगे, गलियों और बाजारों में मेरा जुलूस निकालने लगे। एक सेठ ने समझा मैं कोई खुदाई फौजदार हूँ या करोड़पति ठेकेदार हूँ, जिसने ऊपर से एक मासूम गधे का रूप भरा है और अंदर ही अंदर बहुत बड़ा ठेकेदार है। वो बहुत मिन्नत समाजत करके मुझे अपने घर ले गया, अपनी फर्म का हिस्सेदार बनाने लगा, अपनी सुंदर लड़की से मेरी शादी रचाने लगा और हाई सोसाइटी में मुझे घुमाने लगा। मैंने बहुत इनकार किया, मना किया, बताया, यूं तो मैं ज्ञान भार से लदा हूं, परंतु दरअसल एक गधा हूं। किंतु वो लालच का अंधा मेरी बात पूरी सुनने से पहले अनसुनी कर देता था और अपनी ही हांके जाता था और मेरी आवभगत किए जाता था। कुछ महीने तो बड़े ऐशो आराम से कटे, किंतु जिस दिन उस लालची सेठ को पता लगा कि मेरे पास कोई परमिट है ना कोटा है, उसी दिन वो बेपिंदे का लोटा है मुझे मारने पर तुल गया। और कमरा बंद करके उसने और उसकी लड़की ने मार मार कर मेरा भुरकुस निकाल दिया और मुझे सख्त घायल करके बाहर सड़क पर लिटाल दिया। 6 मास तक मैं जानवरों के अस्पताल में पड़ा, जीवन और मृत्यु के बीच लटकता रहा, पीड़ा की अधिकता से कराहता रहा, इंसानों की बेहिसी और गधों की बेबसी पर रोता रहा। किंतु ईश्वर को मेरा जीना स्वीकार था और मेरे लिए जिंदगी का जहर पीना डॉक्टर, जिसका नाम रामावतार था और अपने काम में बड़ा होशियार था, मेरी विवशता समझकर मुस्करा दिया और बिल को वापस अपनी जेब में डालते हुए बोला, तो मेरा ये कर्ज तुझ पर बाकी रहा। अब अगर वाकई तुम ये कर्ज देना चाहते हो तो सीधे बंबई चले जाओ। मैं तो स्वयं ही दिल्ली में नहीं रहना चाहता था। दिल्ली, जिसने मेरी प्रसिद्धि की ऊंचाई देखी थी और जो अब मेरे पतन की नीचाइयां देख रही थी, अब मुझे एक आंख न भाती थी। इसलिए मैंने डॉक्टर की सलाह मान ली और बंबई जाने की ठान ली। दिल्ली से मैं रेल की पटरी के किनारे किनारे हो लिया और मथुरा पहुंचा, क्योंकि मुझे मथुरा के पेड़े खाने का बहुत शौक था। किंतु मथुरा में मुझे पेड़ों के बजाय पंडों के डंडे खाने को मिले और वहां से जान बचाकर सीधा ग्वालियर पहुंच गया। उद्देश्य ये था कि तानसेन की समाधि पर जाऊं और उस महान संगीतकार के सामने अपना शीश नवाऊं, जिसके नाम से भारत में शास्त्रीय संगीत की प्रतिष्ठा कायम है। और ये तो सब लोग जानते हैं कि आजकल भारत में केवल 2 प्रकार के लोग शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं, एक तो तानसेन के श्रद्धालु और दूसरे गधे, वरना सारी दुनिया रेडियो सीलोन सुनती है। तानसेन की समाधि पर बड़ा सन्नाटा था। एक कोने में 2 मुजाविर पड़े ऊंघ रहे थे। जमीन पर बासी हारों की पत्तियां बिखरी पड़ी थी। थोड़ी दूर पर कुछ भेड़ बकरियां फिल्मी प्लेबैक गाने वालियों की तरह मिमिया रही थी। संगीत सम्राट की समाधि की बुरी दशा देखकर मेरे दिल को बहुत दुख हुआ और मैंने वहीं चारों घुटने टेक कर स्वर्गीय उस्ताद की सेवा में दंडवत होकर माथा टेका और फिर सिर उठाकर शुद्ध झंझोटी में एक ऐसी जोरदार तान लगाई जिसने अर्धनिंद्रित मुजाविरों को झंझोड़ दिया। वे जागकर मेरी ओर आश्चर्य से देखने लगे और बजाय इसके कि लोग मेरे जौके सलीम बल्कि जौके अकबर की दाद देते, जिसके सहारे मैंने स्वर्गीय उस्ताद की आत्मा को प्रसन्न करने का प्रयत्न किया था, वे तो पंजे झाड़कर मेरे पीछे पड़ गए और डंडे मार मार कर उन्होंने वहां से भगा दिया। मैं डंडे खाकर इतना बेमजा ना हुआ था जितना ये सोचकर बेमजा हुआ कि अब इस देश में आर्ट और कल्चर का भगवान ही मालिक है, जहां एक पक्के गाने वाला दूसरे पक्के गाने वाले को अपनी श्रद्धांजलि भी भेंट नहीं कर सकता। अतः मैंने जोर की दुलत्ती झाड़ी और रास्ते में खाई देखी न खाड़ी, सीधा बंबई आकर दम लिया। यहां पर घीसू घसियारे ने मुझ पर दया की और मुझको अपने मकान पर बांध लिया। घीसू घसियारा था बड़ा बेचारा, क्योंकि उसके बच्चे थे 11। वो घास का एक गट्ठा अपने सर पर लादता था और चारा मेरी पीठ पर, और रोज पहुंच जाता था जोगेश्वरी में दूध बेचने वाले ग्वालों के पास, जो उसकी घास के गट्ठे खरीद लिया करते थे और उसे उसका मूल्य दे देते थे, जिसे लेकर वो सीधा जोसेफ डिसूजा की झोंपड़ी में जाता था और जाते ही एक पव्वा ठर्रे का चढ़ाता था और अपने दोस्त रमजानी कसाई और करनैल सिंह टैक्सी ड्राइवर से गप लड़ाता था। मैं झोंपड़े के बाहर नारियल के पेड़ों के नीचे हरी हरी घास चरता था और शुक्र करता था कि आखिर मुझे आराम की जिंदगी मिली। बंबई में आकर मैंने इंसानों की बोली त्याग दी थी, क्योंकि अनुभव ने मुझे बता दिया कि इंसानों की दुनिया में वही लोग प्रसन्न रह सकते हैं जो गधे बनकर रहें। बुद्धिमान का यहां गुजारा नहीं, क्योंकि अच्छा परामर्श किसी को प्यारा नहीं। इसलिए मैं इंसानों की बोली से हजर करने लगा और जानवरों की जिंदगी बसर करने लगा, जैसे बंबई में वे सब लोग बसर करते हैं जिनके लिए पैसा ही प्यारा है और जिन्हें केवल अपना ऐशो आराम दुलारा है। 6 महीने में मैं हरी हरी घास खाकर खूब मोटा हो गया। मेरी काली खाल चिकनी हो गई और मरे अयाल पर सेहत का रंग चमकने लगा और मैं एक सुंदर गधा बन गया, जिस पर कोई भी गधी मुग्ध हो सकती थी। और ये तो कोमलांगियों की कमजोरी है कि वे हमेशा से सुंदर गधों पर मुग्ध होती हैं। चिकनी खाल पर उनकी जान जाती है, चाहे उसके अंदर भूसा ही भरा हो। इधर कुछ अरसे से 2-3 गधियों ने मुझ पर डोरे डालने शुरू किए, किंतु इनमें जो सबसे अधिक कोमल और मादक भाव भंगिमा वाली थी, वो मुझसे बिल्कुल बातचीत नहीं करती थी। इसलिए मेरा दिल बार बार उसकी ओर खींचा चला जाता था और एक विचित्र सा आकर्षण मेरे दिल में उसके प्रति अनुभव होता था। उसके कान लंबे, पतले, सुडौल और सुनहरे बालों वाले थे, और जिस तरह वो अपने छोटे छोटे सफेद दांतों से हरी दूब चरती थी, उस पर मेरा दिल लोटपोट हो जाता था। वह दूसरी भूखी चटोरी गधियों के समान घास पर पिल नहीं पड़ती थी, बल्कि बड़े धैर्य से एक ग्रास खाकर अलग हो जाती थी और बुरी घास को सूंघकर अरुचि से छोड़ देती थी। इससे मालूम होता था कि वो किसी अत्यंत श्रेष्ठ और ऊंचे परिवार की गधी है, जो केवल मनोरंजन के लिए गधों के इस झुंड में जोसेफ डिसूजा की झोंपड़ी के बाहर नारियल के पेड़ों के नीचे चरने चली आती है। भूख अमीरों के लिए एक बढ़िया मनोरंजन है, हालांकि गरीबों के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। एक दिन अवसर पाकर मैं उसके निकट चला गया। वह नारियल के एक झुंड के नीचे अकेली घास चर रही थी और अजब शान से अपनी दुम हिला रही थी। मैंने उसके निकट जाकर धीरे से कहा, ऐ सुंदरी, कब तक हमसे नजरें चुराओगी? जरा इधर तो देखो अपने आशिक की तरफ। हिश, वो अपने नथुने फुलाकर बड़ी घृणा से हिनहिनाई। आखिर ऐसी भी उपेक्षा क्यों? मैं भी एक गधा हूं, मैंने कहा। प्रेम में हर आदमी गधा हो जाता है, उसने ऐसे कटीले स्वर में मुझसे कहा कि मैं एक क्षण के लिए चुप हो गया। वास्तव में वो बेहद हाजिर जवाब गधी थी। मालूम होता था कि अच्छी शिक्षा पाई है। मैंने सोचा, अगर इससे मेरी शादी हो जाए तो जिंदगी संवर जाए, वरना आम गधों की शादियां ऐसी गधियों से होती हैं जिन्हें घास चरने और बच्चे जनने के सिवा कोई काम नहीं आता। ये तो बड़ी विदुषी है और कर्तव्य परायण मालूम होती है। ईश्वर ने इसे सौंदर्य के साथ सुरुचि भी प्रदान की है। अरे, इसके साथ तो पिक्चर भी देखी जा सकती है। जरा सोचो तो हमारे बच्चे कितने तीव्र बुद्धि के होंगे, बिल्कुल गधे तो ना होंगे, मैंने उसकी ओर गर्दन बढ़ाकर कहा। डार्लिंग, उसने ऐसी जोर की दुलत्ती झाड़ी कि यदि मैं तत्काल ही अपनी गर्दन ना मोड़ लेता तो शायद मेरी आंख ही फूट जाती। मैं घबरा कर पीछे हट गया। उसके नथनों से चिंगारियां निकल रही थी। वो अग्निमय दृष्टि से मुझे ताकते हुए बोली, एक घसियारे के गधे होकर मुझसे प्रेम करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मैंने घबरा कर कहा, तुम कौन हो? वह बोली, मैं विक्टर ब्रुग्रांजा की गधी हूँ, जो जोसेफ डिसूजा का बॉस है और 10 भट्टियों का मालिक है। गोरेगांव से दूर दूर तक उसका ठर्रा बिकता है, और मैं तुम्हारी तरह घास नहीं लाती हूँ। शराब के केवल 4 पीपे गोरेगांव से लाद कर यहाँ जोगेश्वरी जोसेफ डिसूजा के झोंपड़े तक पहुँचा देती हूँ और फिर शाम को खाली पीपे लेकर वापस जाती हूँ। तुम्हारी तरह दिन भर गधों की तरह मेहनत नहीं करती हूँ मैं। क्या बात है बेटी, अचानक पास ही से एक आवाज आई और मैंने देखा कि पकी आयु की उजली किस्म की एक गधी उस जवान गधी के निकट आ गई। कुछ नहीं अम्मा, ये गधा मुझसे प्रेम करने चला है, जरा सुनो तो इसकी बात। पकी आयु की गधी ने मुझे सर से पांव तक देखा और बोली, कौन हो तुम? मैंने बताया, सुनकर बोली, तुम्हारा हमारा क्या मेल? तुम हिंदू हो, हम ईसाई, कहाँ के रहने वाले हो? यूपी का। लो, तुम यूपी के, हम महाराष्ट्र के, तुम्हारा हमारा क्या जोड़? कौन जाति हो? गधों की भी जाति होती है, मैंने पूछा। वाह, क्यों नहीं होती? जो मालिक की जाति होती है वो उसके गुलाम की जाति होती है, वही उसका धर्म भी होता है। हम जानवर लोग अपने मालिक के रुतबे से पहचाने जाते हैं, हम वही सोचते और करते हैं जो इंसान करता है। हालांकि मैंने तो अक्सर इंसानों को जानवर की तरह सोचते और करते देखा है बड़ी बी, मैंने नम्रता से कहा। बड़ी बी को मेरी बात पसंद आई, बोली, तुम समझदार गधे मालूम होते हो। अच्छा ये बताओ, अगर मैं अपनी बच्ची की शादी तुमसे करने को तैयार हो जाऊं तो तुम मेरी बच्ची को रखोगे कहाँ और खिलाओगे क्या? अब रखने को कोई विशेष स्थान तो है नहीं घीसू घसियारे के यहाँ, वो तो मुझे रात भर घर के बाहर जामुन के पेड़ से बांध देता है, बल्कि प्रायः मुझे खुला ही छोड़ देता है ताकि मैं इधर उधर घास चर के अपना पेट भर लूं। तो वो तुम्हें घास नहीं डालता क्या?
नहीं।
तो इसका मतलब है अगर मेरी बच्ची की शादी तुम्हारे साथ हो जाए तो उसे भी घास नहीं मिलेगी? अरे प्रेम में घास क्या करेगी बड़ी बी, इकबाल ने कहा है, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क। इश्क बड़ी बी, इश्क तो इश्क है और घास घास है। मुझे देखो, घास भी खाता हूँ, इश्क भी करता हूँ, और कभी कभी जब घास नहीं मिलती तो केवल इश्क खाता हूँ और कव्वाली गाता हूँ, ये इश्क इश्क है इश्क इश्क, ये इश्क इश्क है इश्क इश्क। बड़ी बी तुम भी मेरी मानो, अपनी बेटी को मेरे हवाले कर दो, घास का क्या है, ये दुनिया बहुत बड़ी है, घास तो कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी। नहीं जी, बड़ी बी कठोरता से बोली, मैं अपनी मासूम बच्ची की शादी तुमसे हरगिज हरगिज नहीं करूंगी, ना बाप का पता ना माँ का, ना धर्म ठीक ना जाति दुरुस्त, कोई ठौर ठिकाना नहीं, रहने का कोई स्थान नहीं, खाने के लिए घास नहीं, ऊपर से पढ़े लिखे आदमियों जैसी बात करते हो, मैंने गर्वपूर्ण शब्दों में कहा। हाँ बड़ी बी, मैं अखबार पढ़ सकता हूँ, पर इसमें बुराई क्या है? ये तो बहुत ही बुरी बात है, बड़ी बी जल कर बोली, आजकल हिंदुस्तान में जितने भी पढ़े लिखे गधे हैं सब क्लर्की करते हैं या फाका करते हैं। तुम ही बताओ, तुमने आज तक किसी पढ़े लिखे ठीक आदमी को लखपति होते देखा क्या? ना भैया, मैं तो अपनी बेटी की शादी किसी लखपति गधे से करूंगी,
चाहे वो बिल्कुल अनपढ़ धामड़ गधा ही क्यों ना हो।
मुझे उस गधी की मूर्खतापूर्ण बातों पर बड़ा क्रोध आया, परंतु चूंकि मामला इश्क का था इसलिए मैं जहर का घूंट पीते हुए उसे फिर से समझाने की कोशिश करने लगा। देखो अम्मा, आजकल जमाना नया है, इस जमाने में धर्म जात पात को कोई पूछता नहीं, हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब गधे हैं, बस इतना ही सोच लेना काफी है, यह प्रश्न राष्ट्रीय एकता का है। अमीर और गरीब में राष्ट्रीय एकता कैसी? तुम्हारी समस्याएं अलग, हमारी अलग, हमारे स्वार्थ अलग, तुम्हारे अलग, हमारा जीवन स्तर अलग, तुम्हारा अलग, और फिर हम तो हिंदुस्तानी भी नहीं है, बड़ी बी ने कहा, हमारी तो नस्ल भी तुमसे अलग है। मेरी बच्ची के दादा, खुदा उन्हें करवट करवट जन्नत बख्शे, विशुद्ध अंग्रेजी गधे थे, और मेरी माँ फ्रांसीसी नस्ल की थी, और तुम तो बड़े बेसुरे बेकार काले हिंदुस्तानी गधे हो और चले हो मेरी बेटी से इश्क जताने। दोनों आंखें फोड़ डालूंगी जो मेरी बेटी की तरफ आंख उठाकर भी देखा। यह कहकर बड़ी बी ने मेरी तरफ पीठ करके इतनी जोर से दुलत्ती झाड़ी कि मैं घबरा कर वहां से भाग खड़ा हुआ और डिसूजा की झोंपड़ी के सामने आकर ही दम लिया। उस दिन से संकल्प किया कि अब प्रेम नहीं करूंगा, क्योंकि प्रेम करने के लिए केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है कि आदमी का स्वभाव कवि जैसा हो, प्रेम करने के लिए यह भी बहुत आवश्यक है कि आदमी को दो वक्त की घास भी मिले, वरना कोई औरत घास नहीं डालती। इसलिए मैंने उस परियों सी सुंदर गधी से प्रेम करने का विचार त्याग दिया और अपने जीवन को केवल घास लादने पर लगा दिया, जो कि हर गधे के भाग्य में लिखा है। दिन बड़े आराम से गुजर रहे थे, घास लादना, घास खाना और अपने खूंटे पर जाके सो जाना, इससे सादा जिंदगी और क्या हो सकती है, और दुनिया में अधिकांश लोग इससे अधिक चाहते भी क्या है। इस निर्दयी आसमान की चाल को क्या कहिए कि मेरी कुछ दिनों की ये शांति भी उससे सहन नहीं हुई। पहली मुसीबत ये आई कि गवर्नमेंट ने जनता के लिए बंबई में खालिस दूध सप्लाई करने के लिए एक बहुत बड़ी डेयरी आरे कॉलोनी के नाम से चालू कर दी। समस्त विपत्तियां इसी प्रकार के नेक इरादों से आरंभ होती हैं। अब भला बंबई में खालिस दूध की जरूरत किसे थी? बंबई के वीर निवासियों ने स्वतंत्रता संग्राम का सारा युद्ध ईरानियों की चाय और ग्वालों के आधा दूध आधा पानी पीकर लड़ा, जीता और जिंदा रहे। उनके लिए खालिस दूध हासिल करने का अर्थ इसके अतिरिक्त और क्या हो सकता था कि उन्हें व्यर्थ में ही निरंतर संघर्ष और लड़ाई के लिए उकसाया जाए। अतएव जिस दिन से बंबई में आरे कॉलोनी की नींव पड़ी, उसी दिन से संयुक्त महाराष्ट्र का किस्सा भी चालू हो गया। आखिर आम आदमी को खालिस दूध पिलाकर वे और क्या आशा कर सकते हैं? ईरानियों की चाय महाराष्ट्र और गुजरात में तालमेल पैदा किए हुए थी, वरना दूध तो सदा विभाजित ही करता है। पहले तो पंजाब को ही ले लीजिए, दूध पीने के अभ्यस्त थे, विभाजन हो गया। अपराध दूध का था और अपराधी ठहराया जाता है अंग्रेजों को। हालांकि साहब, दूध में ऐसी शक्ति है कि यदि आप कुछ भी ना करें, उसे कुछ घंटों के लिए किसी बर्तन में अकेला छोड़ दें तो स्वयं ही विभाजित हो जाता है। दूध का दूध, पानी का पानी, दोनों अलग।
कृष्णचंद्र की लंबी कहानी एक गधे की वापसी का पहला भाग आज आपने सुना अनुराग शर्मा के साथ। इसका दूसरा भाग सुनिए कल बोलती कहानियां कार्यक्रम में इसी समय पर।
Playback India.